मेरे आत्मीय युवा मित्रों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 2 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं बहुत ही आपसे एक जनरल विषय पर बात करने जा रहा हूं, लेकिन है यह विषय बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट। आप यूं कह लीजिए कि यह ठीक उसी तरह से इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से ठीक इससे पहले आपने ग्लोबलाइजेशन वाले विषय पर कुछ बातें जानी थी, कुछ बातें सुनी थी। और आज का यह हमारा विषय है, वह है जवाबदेह प्रशासन, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, आप सिविल सर्विस के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, यहां तक कि प्री में भी इस टॉपिक पर आपको प्रश्न मिल जाएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि हर साल मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे सीधे सीधे कुछ सालों में। एक बात यहां पर आपको ध्यान रखनी होगी कि बहुत से ऐसे प्रश्न आपको दिखाई देंगे कि जिसमें सीधे सीधे जवाबदेही प्रशासन की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन उन प्रश्नों के सही उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आपको एक तरीके से जवाबदेह प्रशासन के चरित्र के बारे में मालूम हो। देखिए, वैसे जब हम सामान्य तौर पर जवाबदेह प्रशासन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही बात आती है कि एक ऐसा प्रशासन जो पूछने पर जवाब दे, या उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन भी आप कह सकते हैं, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो, राइट? तो प्रशासन तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझनी चाहिए, तो फिर हम अलग से जवाबदेह प्रशासन की बात क्यों कर रहे हैं? तो जब आपको इसका चरित्र समझ में आ जाता है तो आप पाएंगे कि प्री में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप इनकी समझ के आधार पर उसके उत्तर दे सकते हैं, और मेंस में तो आपसे सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। अगर आप मेंस में इसे देखना चाहेंगे तो ये आपके जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में शामिल है। आपको मालूम है कि जनरल स्टडीज मेंस का जो सेकेंड पेपर है उसमें आपकी गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में है, तो ये जो गवर्नेंस है वो बेसिकली जवाबदेह प्रशासन के अंतर्गत आता है, या यूं कह लीजिए कि जो जवाबदेह अपने आप में गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, आइए इस पर हम आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, और ये जो बातें होंगी वो बहुत ही तकनीकी बातें नहीं है, है ना? ये मैं बहुत ही आपको जनरल वे में समझाने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूं। देखिए फ्रेंड, जब हम कहते हैं कि अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी शुरुआत आप यूं मान करके चलिए कि सन 2000 के बाद ज्यादा हुई, हालांकि इसकी जो डिमांड है इंटरनेशनल लेवल पर 1970 के बाद होने लगी थी कि जो प्रशासन है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, उसे उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए। भारत में इसकी डिमांड ज्यादा, यूं कह लीजिए कि 1980 के बाद से हलचल होने लगी थी, थोड़ी थोड़ी हलचल 1980 के बाद से होने लगी थी। 1990 के बाद इसमें थोड़ी सी तेजी आई क्योंकि वैश्वीकरण की शुरुआत हो गई थी, और सन 2000 के बाद यूं कह लीजिए कि इसने एक तरीके से हल्ला गुल्ला का रूप ले लिया कि नहीं, अब आप इससे बच नहीं सकते, अब आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये स्थिति भारत में रही। तो क्या हम ये माने कि इससे पहले का जो प्रशासन था वो उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं था, जिसकी चर्चा अभी मैंने शुरू में की? अगर वो था तो फिर हम अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात क्यों कर रहे हैं? या तो हम इससे पहले वाले को अउत्तरदायित्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन मान करके चलें, मतलब बहुत ये इस तरह का प्रश्न दिमाग में उठता है। तो यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम कहते हैं अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन तो उसका मतलब क्या होता है। देखिए, प्रशासन की तो जिम्मेदारियां हैं ही कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे, उस और भी जो दूसरे काम उसको सौंपे गए हैं, अगर नगर निगम का प्रशासन है तो वो शहर को साफ रखे, अगर स्वास्थ्य प्रशासन है तो वो लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करे, अगर वो एजुकेशन का प्रशासन है तो वो लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराए, तो ये तो उसकी जिम्मेदारियां हैं और वह ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करे, राइट? लेकिन उत्तरदायित्वपूर्ण वहां होता है फ्रेंड्स कि यदि वह ऐसा नहीं कर पा रहा है, यह तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो करे, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो फिर वो बताए कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा है इस बात को स्वीकार करके वो इसकी सजा भुगते, यूं कह लीजिए, मैं आपने ब्लंटली मैंने बोल दिया, सजा भुगते का मतलब है कि इसके बारे में वो जनता को जवाब दे, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, कि वो जनता को जवाब दे कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है, और उसके जो जवाब हो वो रिजनेबल होने चाहिए। ये जवाब नहीं कि नहीं नहीं हो पाया, नॉट एट ऑल। और अगर सब कुछ होते हुए भी वो उस काम को नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, फिर उसको उस जो प्रशासन है, जो सरकार है, या जो भी व्यक्ति है, उसके खिलाफ एक्शन ले, सीधी सी बात है। तो जब हम जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए, अब ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि वो जवाब देने के दायित्व से परे नहीं है, उसे जवाब देना पड़ेगा। और देखिए, सामान्य रूप में जब हम सोचते हैं कि उसे जवाब देना पड़ेगा तो लगता है कि ठीक है, वो जवाब दे देगा, उसमें क्या बात है, बता देगा। लेकिन मित्रों, ये उतना आसान नहीं है। जब होता है कि उसे जवाब देना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे पहले क्या होता था, देखिए, इससे पहले भारत में था एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मतलब है कि यदि आप सरकारी तंत्र में कोई भी जानकारी सरकारी तंत्र से मांगते हैं, अब ये पूरी तरह से सरकारी तंत्र की अपनी मर्जी पर है कि वह आपके प्रश्न का जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, चाहे ओरली चाहे लिखित रूप से, पूरी तरह से उसके अपने ऊपर है। अगर उसको लगता है कि हाँ दिया जा सकता है, कोई खास बात नहीं है, तो आपको दे भी सकता है, अदरवाइज वो सीधे मना कर सकता है और कह सकता है कि नहीं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, गोपनीय कानून के तहत, यानी सरकारी गोपनीय कानून के तहत हम आपको यह जानकारी नहीं दे सकते, बात खत्म हो गई। मतलब अब पब्लिक को पता ही नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और आप पूछ रहे हैं कि भैया इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है, सारा पैसा, तो वो कह रहा है कि पैसा खत्म हो गया, पैसा ही नहीं है। तो आप उसे कहेंगे कि अच्छा, हमको ये बताइए कि 100 करोड़ रुपए कहां खर्च हुआ, हमको हिसाब दीजिए। तो आपको हिसाब देने के लिए बाध्य नहीं था, वो कह देता कि नहीं, ये हिसाब हम आपको नहीं दे सकते, हम ऊपर वाले को देंगे, अपने ऑफिसर्स को देंगे, अपने अकाउंट सेक्शन को देंगे, आप कौन है मांगने वाले। इसका मतलब यह हुआ कि वो पब्लिक के प्रति कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जबकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आप देखिए कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम तो पूरी तरह से पब्लिक के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल है। पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं और उससे रिलेटेड जो मिनिस्टर होते हैं उनके जवाब देते हैं, तो वही है ना कि वो जनता को जवाब दे रहे हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो प्रश्न पूछ रहा है वो जनता के बिहाफ पर पूछ रहा है, और मिनिस्टर सरकार के बिहाफ पर जवाब दे रहा है, प्रशासन के स्तर पर जवाब दे रहा है, और वो जनता को जवाब दे रहा है। याद रखिए कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जवाब तो जरूर दे रहा है, लेकिन उसके माध्यम से वो देश को बता रहा है कि इसके बारे में ये स्थिति है। तो पॉलिटिकल सिस्टम तो जवाब देते और 5 साल के बाद उनको फिर जनता के सामने जाना है और फिर जवाब देना है कि आपने क्या क्या किया, जनता पूछ रही है, अब आप जवाब दीजिए, और अगर जनता उसे संतुष्ट नहीं है तो आपको बाहर कर देगी, किसी दूसरे को ले आएगी, अब संतुष्ट है तो आपको फिर से सत्ता सौंप देगी। तो अब आप देखें कि हमारे पास सीधे सीधे आजादी के बाद एक बड़ा कंट्राडिक्शन की स्थिति थी कि जो पॉलिटिकल हमारा सिस्टम था वो तो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल था, लेकिन जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अकाउंटेबल नहीं था। अब आप एक चीज यहां थोड़ा सा माइनर डिफरेंस देखेंगे, मैं खासकर उन्हीं बारीकियों की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं, तो अदरवाइज तो फिर ये टॉपिक आपको बड़े आराम से किताबों में मिल जाएगा, कोई बहुत ऐसा एक्सक्लूसिव टॉपिक नहीं है जो मिलेगा नहीं, और दूसरा कि ऐसा बहुत कठिन टॉपिक भी नहीं है जिसे आप पढ़ करके समझ नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन मैं उसकी जो बारीकियां हैं मैं उस पर आपको आपका ध्यान ले जा रहा हूं। लेकिन अब आप देखिए कि जब कोई मिनिस्टर जवाब देता है ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो याद रखिए कि वो पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, वो एक्सिक्यूटिव का पार्ट है, वो कार्यपालिका का हिस्सा है, वो कार्यपालिका की तरफ से जवाब दे रहा है, राइट। तो अब वो जो जवाब दे रहा है उस जवाब में भी उसके पास बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि वो जवाब न दे, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट काम कर रहा है, राइट। तो यानी कि जब वही मिनिस्टर पॉलिटिकल सिस्टम में काम करता है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल सिस्टम में काम कर रहा है, अकाउंटेबल पॉलिटिकल सिस्टम में काम कर रहा है, लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन जाता है तो फिर वह अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काम नहीं करता है। ये खाई हमारे सिस्टम में थी, राइट? तो इसमें परिवर्तन कैसे आया? तो कैसे हम 2000 के बाद इतने अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाने लगे, अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन की खूब बातें होने लगी? और देखिए, अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में जो सबसे क्रांतिकारी जो कदम उठाया गया है, वो मित्रों मैं जो मानता हूं, वो है सन 2005 में जो राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, सूचना का अधिकार। क्योंकि सूचना का अधिकार से ही तो आपको जानने का हक मिला है, और अब उनके पास छिपाने की स्थितियां नहीं रह गई हैं। अब वो अकाउंटेबल हो गए कि नहीं भैया, ये 100 करोड़ रुपए अगर हम इधर उधर खर्च करेंगे, गलत खर्च करेंगे, तो जनता पूछेगी तो हम बताएंगे क्या? तो देखिए, छोटी सी चीज लगती है, चीज अगर वैसे देखिए कि भाई पूछने पर बताया जाए तो छोटी सी चीज लगती है, लेकिन छोटी सी चीज नहीं है। देखिए, छुपाने जहां भी छुपाने की आप गुंजाइश दे देंगे, वहीं करप्शन पनपने लगेगा। जहां भी छुपाना होगा वहीं करप्शन आ जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि जब अकाउंटेबिलिटी की बात होने लगती है, तो उसमें फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न आप पूछेंगे और वो जवाब देगा। आपको पूछने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? अपनी तरफ से वो बताए ना, अपनी तरफ से वो चीजें ओपन कर रहा है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, सारी चीजें पारदर्शी है, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप देख लीजिए, चले जाइए, आप बहुत सी वेबसाइट है, आप देखिए कि हर मंत्रालय की वेबसाइट है, वहां आप क्लिक कीजिए, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बहुत डिटेल्स मिल जाएंगे कि कितना खर्च हुआ, आगे कितना होना है, कब तक पूरा होना है, सारी वहां दी हुई है। और फिर ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ एक और फैक्टर आया, वो है सोशल ऑडिटिंग का। सोशल ऑडिटिंग कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है, अब ये देखा जाएगा कि भैया ये 100 करोड़ रुपए तो यहां पब्लिक के लग गए। याद रखिए कि जो सरकार का पैसा होता है वो सरकार का पैसा नहीं होता, हम कहते तो सरकार का ही पैसा होते हैं, लेकिन कहते हैं लेकिन बेसिकली वो पब्लिक का पैसा होता है। पब्लिक ने पैसा दिया है ना, पब्लिक ने टैक्स दिया और वो सरकार के पास है, तो पब्लिक का पैसा है। तो अगर 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, जो पब्लिक का पैसा खर्च हुआ है, तो अब हमें ये जानने का हक है कि भैया इस पैसे का कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ऐसे ही इसको फूंक दिया गया है, कि ऐसे ही सनक सवार हुई और 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा दिया गया। तो आप एक शब्द सुनते होंगे कि सोशल ऑडिटिंग, यानी कि इससे जो पर्पज सर्व होना चाहिए था, जो समाज को लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ मिला या नहीं मिला, और अगर लाभ नहीं मिला है तो फिर क्यों नहीं मिला, और फिर आगे की परियोजनाओं को आप उसी तरह से देखिए। ऐसी परियोजनाएं मतलब ये जहां इस तरह से पब्लिक मनी वेस्ट होती हो, राइट? तो आपको अब यहां सीधे सीधे तीन तत्व अकाउंटेबिलिटी के मिल गए। देखिए, एक तो सीधे सीधे अकाउंटेबिलिटी, जिसकी हमने विस्तार से बात की है, दूसरी हो गई ट्रांसपेरेंसी, कि आप चीजों को क्लियर करिए, पारदर्शी रखिए। पूछने की जरूरत हमें बाद में पड़नी चाहिए, जब इसमें से कुछ प्रश्न पूछा बनेगा तब हम पूछेंगे, नहीं तो हमको अपने आप बताइए। और इसके बाद है सोशल ऑडिटिंग, जो बाद में होता है। तो हुआ ये फ्रेंड्स कि खासकर अब मैं आपको वो तीन चार चीजें बताना चाहूंगा जिसने अकाउंटेबिलिटी के लिए मजबूर किया है हमारे प्रशासन को। पहला तो यह ग्लोबलाइजेशन, कि देखिए अगर आप पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं तो आप दुनिया के सिस्टम से अलग नहीं रह सकते, तो आपको जो दुनिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं आपको भी उसे फॉलो करना पड़ेगा। और खासकर कह लीजिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, उनके कल्चर को आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आएंगी तो बट नेचुरल है वो आपके सिस्टम से उस तरीके से काम करना उनके लिए संभव नहीं होगा, और वहां की अपनी जो सरकारें हैं, वहां का अपना जो सिस्टम है, तो वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या कह लीजिए विदेश के साथ जब हमारा व्यापार हुआ तो एक नया कल्चर आया मैनेजमेंट का। और सच पूछे तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना धीरे धीरे मैनेजमेंट की तरफ जाने लगा, मैनेजमेंट की तरफ, प्रशासन नहीं, आदेश से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी मैनेजमेंट से, बात बनेगी प्रबंधन से, बात बनेगी समझाने बुझाने से। पुलिस प्रशासन नहीं चलेगा, आर्मी रूल नहीं चलेगा, राइट? तो एडमिनिस्ट्रेशन की जगह मैनेजमेंट का जोर धीरे 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 बढ़ने लगा। तीसरी चीज आप देखिए कि सरकारी तंत्र में भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनका प्राइवेटाइजेशन होने लगा, या कह लीजिए कि पैरेलली प्राइवेट कंपनीज आने लगी। एयरलाइंस, ठीक है सरकारी एयरलाइंस है तो भैया वो चाहे जैसा भी करे जो भी करे, लेकिन जब प्राइवेट एयरलाइंस आ गई तो प्राइवेट एयरलाइंस का तो अपना कल्चर अलग है, उनका कल्चर तो मैनेजमेंट का है, तो बट नेचुरल है कि उस कल्चर को लोग अगर पसंद करेंगे और सरकार अगर अपने कल्चर को पुराना ही रखेगी प्रशासन, तो बट नेचुरल है कि धीरे धीरे एयरलाइंस गायब हो जाएगी। तो जो प्राइवेट का जो कल्चर था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, जो मल्टीनेशनल कंपनीज का, जो वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका प्रभाव सीधे सीधे भारतीय प्रशासन पर पढ़ना शुरू हुआ, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सोशल ऑडिटिंग की डिमांड बढ़ने लगी। इसके बाद आप देखिए कि दो तीन और जो परिवर्तन भारत में आए, और एक हो गया कि इस बीच में आप देखिए कि 1990 के बाद से लगातार भारत गठबंधन सरकार के दौर में चल रहा है। किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को ठीक है स्पष्ट बहुमत, लेकिन सरकार गठबंधन की है, राइट? तो जब गठबंधन की सरकार होती है तो फिर आप सब चीजें अपने हिसाब से नहीं कर सकते, तो वहां भी आपको चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी एक प्रकार का मैनेजमेंट आना शुरू हुआ, राइट? इसके बाद इसी बीच में आप देखिए कि 1990 के बाद से 92-93 के आपके पंचायती राज कानून जब बना, तो जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने लगी, और धीरे धीरे ग्रास रूट लेवल तक केवल यानी कि चुनाव करा करके छोड़ दिया गया, उनको वो अधिकार भी दिए गए, धीरे धीरे उनको राइट्स दिए गए कि आप योजना बनाइए, आप उसको लागू भी कीजिए, आप उसको सुपरवाइज भी कीजिए, आप उसको मेंटेन भी कीजिए, और फिर आप उससे फायदा उठाइए। तो अब सवाल यह है कि अगर आप वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएंगे, वहां अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे, तो बट नेचुरल है कि फिर वहां कितने भ्रष्टाचार के तौर तरीके पनपेंगे आप नहीं जानते हैं। तो अगर आपको पब्लिक को अधिकार देना है, तो पब्लिक को अधिकार देने का मतलब यह नहीं है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको आप अधिकार दे दें और कह दीजिए कि हमने पब्लिक को अधिकार दे दिए हैं। आपको सिटीजन्स को अधिकार देने पड़ेंगे कि सिटीजन उनकी निगरानी कर सके, उनसे सवाल पूछ सके, और 2005 के राइट टू इन्फॉर्मेशन ने यही किया। तो डेमोक्रेसी धीरे धीरे ग्रास रूट लेवल पर फैलती चली गई, और इसके बाद मित्रों जो सबसे बड़ा योगदान किया वो टेक्नोलॉजी ने, तो कमाल ही कर दिया है। अब मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि अगर हाँ आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद हम ट्रांसपेरेंसी के इस स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाते जो आज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत आसान बना दिया। फोटो खींच करके भेज दीजिए तो पता लग जाएगा कि यहाँ की सड़क उखड़ी हुई है, आप शिकायत कर दीजिए, दुनिया भर के वेबसाइट्स आ गई हैं, दुनिया भर के पोर्टल आ गए हैं, तुरंत खबरें पहुंच जाएंगी, आप प्रमाण दे दीजिए। आप देखिए ना कि टेक्नोलॉजी ने क्या से क्या नहीं कर दिया। तो टेक्नोलॉजी ने भी फिर मदद की, और उसकी वजह से फिर प्रशासन को अकाउंटेबल होना पड़ा। तो मित्रों ये कुछ बातें मैंने जो वक्त की सीमा में बताई जा सकती थी वो बताने की कोशिश की है, और मेरा विश्वास है कि डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर हुआ ही होगा। तो फ्रेंड्स अब इसी के साथ ही मैं अब इस विषय को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।